Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandukya Upanishad presented by Swamini Sri Nishthanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Bhadram Karne Vishnuyam Devah भद्रं पश्ये माक्षभैर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्टुवागुंसत्तनूभिः यशेमदेवहि संयदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु
सहनौ नस्तु सह वीर्यं करवावहै
मंत्र 3 मांडुक्योपनिषद
जागृतस्थानः
बहिष्प्रज्ञः
सप्ताङ्गः
एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक्
वैश्वानरः
प्रथमः पादः ये जो व्यवस्था है, तीन अवस्थाएं उपनिषद के द्वारा समझाई गई है। अवस्थाएं स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के जरिए हो रही है। अनुभव ये जड़ जो संगात है वो करण है, उसके द्वारा अनुभव जो हो रहा है। अगर किसी के भी अनुभव में सोचिए, किसी के भी अनुभव में अगर जड़ संघात की मदद लेनी पड़ती है, जागृत अवस्था का अनुभव बिना शरीर हो सकेगा क्या? बोले नहीं हो सकेगा। और जड़ संघात के जरिए अगर कोई अवस्था को जानी जाए तो यही बता रहा है कि जिसको जानने के लिए करण चाहिए वो तो ठीक होगा ही नहीं, वो सत्य नहीं होगा, वो सत कोटि में नहीं आएगा, वो नित्य कोटि में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि परमात्मा कैसे है तो बोले अवांग अमनस अगोचरम, यानी इंद्रियों से पर है, जो वाक से भी पर है, मन से भी पर है। और जागृत अवस्था का अनुभव शरीर मन बुद्धि के जरिए होता है, तो भाई जागृत अवस्था हमें क्यों सिखाई जाती है? और जागृत अवस्था में सिखाई जाती है इतना भी नहीं, अगर शरीर की ये जागृत अवस्था है इतना ज्ञान होता तो पर्याप्त होता। ये जो अवस्था जो है उसमें ये परमात्मा स्थूल भूख बनते हैं, 7 अंग वाले हैं, 19 मुख वाले हैं, ऐसा क्यों बताया है? तो जो उपनिषद को हमसे जो अपेक्षा है ये ज्ञान जानने के बाद उसके ऊपर थोड़ा विचार करना चाहिए। अत्र परोक्ष प्रियः देवता, ये देवता जो है परमात्मा संबंधी जो भी बात है, देवता परोक्ष प्रिय है, उनको डायरेक्ट कुछ नहीं चाहिए। ऐसा ही नहीं कह सकते कि ये ब्रह्म है इसे जान लो, वो जो भी कुछ बोलते हैं उसमें दूसरा अर्थ लगाया हुआ होता है, पर वो जो अर्थ होता है परोक्ष अर्थ होता है वो हम खुद की बुद्धि से नहीं निकाल सकते, वहां इतनी ही मर्यादा है। दूसरे किसी भी व्यवहार में आप परोक्ष अर्थ निकाल सकेंगे, कोई व्यक्ति है बाहर से तो दिखता नहीं वो कैसी है, पर हम अर्थ जो निकालते हैं कि ये व्यक्ति ऐसी है तो वो क्या हुआ, वो मेरे मन से निकाला हुआ परोक्ष अर्थ है। कोई दूसरी व्यक्ति को उसके बारे में पूछेंगे तो दोनों जो स्टेटमेंट है वो टैली नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि हर एक ने अपना अपना अर्थ निकाला। तो यहां ये जो उपनिषद जो बात कर रहा है उसमें हम सब अपना अपना अर्थ नहीं निकाल सकते, नहीं तो ब्रह्म कितने हो जाएंगे, जितने हम बैठे हैं ना उतनी ब्रह्म की व्याख्या हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो परोक्ष अर्थ है उपनिषद में जैसे बताया है भाष्य में जैसे, ऐसे ही हमें ठीक ठीक समझना है। पर उसके पहले एक बात आपको पूछनी है, आप किसी के घर मेहमान बने हैं, आपको किसी ने इनवाइट किया है, ऐसे भी कहते हैं नेवर गो अनइनवाइटेड, अनइनवाइटेड बिना इनविटेशन, बिना न्योता कहीं भी मत जाइए, एक ही जगह जा सकते हैं आप बिना न्योता, कहाँ? ऊपर नहीं। ओ भाई डर जाएंगे सब। अब ऊपर की बात मत कीजिए। हाँ, बिना न्योता आप कहाँ जा सकते हैं बिना इनविटेशन? हाँ हाँ, गुरु के पास, मंदिर में, ठीक है, बिना न्योता जा सकते हैं। पर व्यवहार में, और व्यवहार में भी अगर बिना न्योता आप किसी के पास चले गए, कोई बिना न्योता आपके दरवाजे पे आके खड़ा रह गया ना, तो समझना भीतर भगवान जाग गया है। हाँ, आपके भीतर जब भगवान का आविर्भाव होगा ना, तो समझ लेना कोई बिना न्योता भी आके खड़ा रह जाएगा आपके दरवाजे के ऊपर, ठीक है। तो बिना न्योता तो आप इनविट, आप पहले बात कीजिए, हमें किसी ने बुलाया, हाँ भाई आप किसी के घर मेहमान बन के चले गए। अब वो घर में 19 मेंबर्स है, कितने? 19 मेंबर है, छोटे बड़े बुजुर्ग सब 19 मेंबर्स है घर में। आप घर में जाते हैं, दरवाजा खुला है तो आप प्रवेश तो कर लिया, अब आपको बुलाया गया था और दरवाजा खुला है, और 19 में से एक भी आदमी, एक भी मेंबर आपके आने की परवाह नहीं करता है और नोटिस भी नहीं लेता है, हरिओम तो छोड़ दो, तो कैसा लगे? आप कितनी देर ठहरेंगे वहां भाई? बुलाया गया है, इनविटेशन दिया गया है, हाँ, तो कितनी देर, कितनी क्षण ठहरेंगे? कितनी क्षण? पानी भी नहीं पिएंगे। हाँ, क्यों भाई? बुलाया गया है तो भाई किसी ने भी हमारी नोटिस नहीं ली। हाँ, ये कितनी सीरियस बात है आपको पता है? कैसा लग जाता है ना, बुरा लग जाता है सबके। इतना ही नहीं, बाहर निकल के बात भी करते हैं कि भाई यहाँ नहीं जाना, किसी ने पूछा भी नहीं, बुलाया और पूछा नहीं, बुलाया और पूछा नहीं, सब जगह हम ढिंढोरा पीटेंगे, हम छोड़ेंगे ही नहीं ये बात, तो ये बात दिमाग में से हटेगी? हाँ, ये बात दिमाग में से नहीं हटेगी। और ये तो व्यवहार में हमारा और आपका अनुभव है ना, होगा नहीं ऐसा अनुभव, पर हो सकता है ना, ये प्रैक्टिकल बात है या नहीं? हाँ, बस ये आप हाँ बोलो तो ही मेरा काम होगा ना। हाँ, तो ये जो घर है नवद्वारे पूरे देही, और हमने कल क्या सीखा, जागृत स्थान में 19 मुख है वो परमात्मा के, जहाँ से वो झलक रहा है। अब 19 मुख के द्वारा वो बेचारा परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा है, एक बार एक क्षण के लिए भी हमने नोटिस की है उसकी, तो भी रह रहा है कि नहीं अंदर? हम वो घर में क्षण के लिए भी नहीं रुकेंगे, हाँ, पानी भी नहीं पियेंगे और चले जाएंगे। और यहाँ ये परमात्मा, आप जिंदा है, आप अभी जिंदा है ना, तो वो है भीतर। हाँ, दैट मीन्स क्या हुआ, इतने सालों तक नोट किया, 19 मुख में से एक मुख को भी देखा कि ये निकला, ये परमात्मा है। ओ आई विश टू यू ओ परमात्मा, बाहर जाके मंदिर में मिलते हैं उसकी बात नहीं है, आपके भीतर जो अभिव्यक्त 19 मुख से हो रहे हैं परमात्मा, उसके सामने आपने एक क्षण भी देखा, वो कितना अपमानित हो रहा है, और कोई भी है। देखिए, ये अत्यंत करुणा जो है ना, अत्यंत करुणा, ये करुणा की पराकाष्ठा है, परमात्मा सब पराकाष्ठा से पर है, तो ये करुणा की भी पराकाष्ठा है। हाँ, यू नेवर कैश टू टेक नोट ऑफ हिम, स्टिल ही इज देयर, फिर भी आपने कभी भी वो रूप के दृष्टा है, मेरी आंख को सत्ता स्फूर्ति शक्ति दे रहा है, ऐसा कभी मन से भी बोला नहीं, उसको थैंक भी नहीं कहा, और वो है, ही स्टिल प्रोवाइडिंग, उसको क्या है, अभी चला जाएगा तो पता लगेगा। ये भाई ने कहा ना। हाँ, 19-19 मुख से निकलने वाले वो परमात्मा का कभी आपने देखा भी, देखने की केयर भी ली कि ये निकल रहा? हाँ परमात्मा, आप श्रवण श्रोता बन रहे हैं, आपके जरिए मैं सुन रहा हूँ, हाँ आपके जरिए मैं स्पर्श कर रहा हूँ, ये जो संपर्क का आनंद आ रहा है अनेक विध विषयों से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से, ये संपर्क से जो आनंद आ रहा है वो भी आप है, संपर्क भी आप ही है, संपर्क की शक्ति भी आप ही है, हाँ तो अभी क्या करना है? ये पढ़ के आपका और मेरा क्या होगा? हाँ इतना ही करना है कि अब इतने सारे चॉइस है, आप 19 जब कोई जिंदा पुरुष जागृत अवस्था का ये 19 मुख से जो अभिव्यक्ति है उस 19 को एक साथ देख लेगा तो समझना आत्म साक्षात्कार हो गया, यही अभी हो सकता है। जितनी भी ज्ञानेन्द्रिया है सब में वो परमात्मा की अभिव्यक्ति दृष्टा मंता श्रोता तुरंत जैसे जो हो जाए कर्म देखते रह जाइए, मन जो भी विचार अच्छा या बुरा जैसे भी इंद्रिय का संपर्क सन्निकर्ष होगा अंदर से एक विचार बाहर निकलेगा, अच्छा लगा बुरा लगा, उसको भी नोटिस कर लीजिए कि ये मैं जानने वाला हूँ, अभी ये मुझे चाहिए इससे दूर रहना है, ओ ये निर्णय लेने की शक्ति वो परमात्मा की है इसको भी मैं जानने वाला हूँ। ये कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय कहीं आप गए, कहीं कर्म क्रिया क्रिया की तो 5 प्राण भी आ गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, कोई चीज इतनी अच्छी लग गई कि आप धन लग गए, आपको शांति से आप बैठ गए, कभी नदी किनारे आप हमारे आश्रम में आए नर्मदा जी के किनारे बैठेंगे तो बिना कुछ प्रयत्न आपको ध्यान लग जाएगा, बिना कुछ प्रयत्न आप शांत हो जाएंगे, ओ ये मेरी शांत जो अवस्था है वो भी आप ही भीतर चित्त से बैठे हुए है। जब कोई मैं कर्म कर रहा हूँ तो ये जो कर रहा हूँ वो भाव आ रहा है वो भी आपके जरिए आ रहा है, ये मैं भुगत रहा हूँ वो आपके जरिए है, ये मैं सोच रहा हूँ बुद्धि से आपके जरिए है, संकल्प विकल्प है परमात्मा आपके जरिए हो रहे हैं, ये 19 मुख से एट अ टाइम एक साथ जब आपने ये परमात्मा की अभिव्यक्ति को देख ली तो बेड़ा पार हो जाएगा, इसलिए ये जागृत अवस्था पढ़नी है और इसमें आप देख सकेंगे तो बात खत्म हो गई, फिर आगे पढ़ना नहीं है, आप चले जा सकते हैं। पर अभिव्यक्ति अब पूरे के पूरी 19 अंग से मुख से नहीं हो सकती है, इसीलिए दूसरी अवस्था की बात करनी चाहिए, भाई ये अवस्था इसमें पूरा नहीं देख सकते हैं तो इस अवस्था में भी देखो, ये दो अवस्था काफी नहीं है तो सुषुप्ति में भी देखिए। धीरे 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 हमें आगे बढ़ाया जाता है, बाकी पूरा उपनिषद दूसरे मंत्र में खत्म हो जाता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो सर्व यानी बात खत्म हो गई, सर्व यानी इतना तो सूक्ष्म बुद्धि से समझ लेना चाहिए कि जो कुछ भी बाहर हो रहा है जो कुछ भी मेरे भीतर हो रहा है वो परमात्मा है, पर सर्व से ये समझ में नहीं आया इसलिए उपनिषद ने जागृत अवस्था का विवरण किया, यहाँ से भी समझ में नहीं आया तो स्वप्न अवस्था में। पर एक बात ध्यान रखिए, वो मेहमान की बात ध्यान रखिए और वे मेहमान आप ही है, इफ यू डोंट टेक नोट ऑफ इट कैसा हो रहा है, ऐसे वो परमात्मा की भीतर हाजिरी है, उसकी सिर्फ आप नोंद लीजिए, सिर्फ नोट लीजिए, हाँ सिर्फ ध्यान दीजिए कि वो है, तो वो अपने आप परमात्मा जो है आत्मा विवरण से तनु स्वामी यानी ये कोई स्पेसिफिक समय पे देश में काल में वो नहीं आने वाले, ये सब मंत्र सुन के आत्मा विवरण से तनु स्वामी यानी एक दिन में बैठा होऊंगा और आत्मा ऐसे खुल जाएगा, कुछ नहीं खुलेगा। ये आत्मा विवरण से तनु स्वामी यानी वो सूक्ष्म बुद्धि वो मति आपके भीतर प्रज्वलित होगी, वो ज्योति वो ज्ञप्ति वो प्रज्ञा से आप भर जाएंगे, जो प्रज्ञा आपको कहेगी कि सर्व ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय सर्व अंतकरण के द्वार से वही परमात्मा झलक रहा है। इसके ही बारे में भगवद गीता में, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ रोज कहती रहूंगी, भगवद गीता के बिना आप उपनिषद में प्रवेश नहीं कर सकते, भगवद गीता में इसीलिए कहा है कृष्ण परमात्मा ने सर्व द्वाराणि कहते या प्रकाश उपजायते, ये इसलिए कहा है प्रकाश उप जाए थे, कानमा से प्रकाश निकलेगा नहीं, सर्व द्वाराणी कहते जब वो परमात्मा मिल जाते हैं तब प्रकाश उप जाए थे, यानी हे अर्जुन आपको तब पता लगेगा प्रकाश यानी क्या, प्रकाश यानी स्वयं प्रकाशित्व परमात्मा का है, प्रकाश यानी प्रकाश से ज्ञान होता है, अभी ये रूम में अंधेरा है तो बस चीज नहीं दिखेगी ना, तो प्रकाश का परोक्ष कार्य क्या है, प्रकाश का परोक्ष कार्य कोई भी चीज को बताना है, जान सकते हैं, हाँ तो कोई भी चीज को जान सकना ये प्रकाश है, तो प्रकाश का शब्द जो है परमात्मा ने इसलिए कहा कि सर्व द्वार से प्रकाश निकलता है, यानी क्या कि सर्व द्वार से जिसके जरिए आप जानते हैं विषय को, जिसके जरिए आप जानते हैं कि मैं ये सब जान रहा हूँ, कर्म भुगत रहा हूँ, वो जो ज्ञप्ति है, वो जो प्रज्ञा है, सर्व द्वार से वो प्रज्ञा ही दिखेगी, न कि ये दो ये इंद्रिय या इंद्रिय के विषय। अब प्रकाश ही आपको दिखेगा, यानी जानने वाला ही आपको दिखेगा, प्रकाश यानी जानने वाला, ठीक है। तो ये है जानने वाला, सर्व द्वाराणी कौनते ये प्रकाश उपजायते, ये प्रकाश वो है, कोई स्थूल प्रकाश नहीं है, ये कभी नहीं दिखेगा, कहीं नहीं लिखा है, पर निकलेगा ही, तो इस प्रकार ये 19 मुख से ही परमात्मा निकलेगा। अब क्या है, इतना सोच लीजिए कि परमात्मा आपके इतना करीब है, जानना ही बाकी है, जो भी है वो आपके ये संगात में भी, ये आपका जो भी परमात्मा ने दिया हुआ है इसी में होगा, बस इतना ही सुन के आप इतना ही याद रख के जाएंगे तो भी काफी हो गया, हमारा काम बन जाता है। कभी बैठे होंगे तो आपको विचार आएगा कि कहाँ से निकल रहा है, चलो 19 में से एक मुख को तो आज टेस्ट कर लूं, क्या वो क्या रहा है, बस हमारा काम हो गया। आप एक बार उसके प्रति सतर्क और सजग हो जाए, इतना ही काम उपनिषद का और गुरुजनों का होता है। तो ये जागृत अवस्था में जो अभिव्यक्ति है उसकी बात कर ली, अब यही अभिव्यक्ति स्वप्न अवस्था में भी वही परमात्मा की अभिव्यक्ति है ऐसा दिखाने के लिए। और जो स्टूडेंट वीक होता है मैथमेटिक्स में, क्या है मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस से ही आदमी मैथमेटिक्स पढ़ सकता है, उसमें कुछ दिमाग की भी कम जरूरत है, दिमाग से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, दिमाग तो चाहिए ही पर प्रैक्टिस से ही सब कुछ हो सकता है। अभी ये जागृत अवस्था में क्षण क्षण परमात्मा को देखने की प्रैक्टिस हो रही है, पर वो कम पड़ती है, क्यों, क्योंकि अभी इंद्रियां बहिर्मुख है, वासनाएं है, थोड़ा अज्ञान है, थोड़ा ज्ञान है, छूट नहीं सकता है, विषय से संपर्क होता है, व्यक्ति से संपर्क होता है, तब थोड़ा छूटने लगती है ये साधना, तो हम क्या करें, तो थोड़ी प्रैक्टिस और बढ़ा देनी है। अब जागृत अवस्था में जो किया, अब स्वप्न में भी वो प्रैक्टिस चालू रखनी है। जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा ज्यादा होमवर्क करते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं, एक्स्ट्रा कोचिंग, तो ये एक्स्ट्रा कोचिंग है। स्वप्न अवस्था में आपको जानना पड़ेगा कि अब वो कैसे है, तो स्वप्न अवस्था में परमात्मा की स्थिति क्या है वो हम जानेंगे मंत्र 4। स्वप्न स्थान
स्वप्नस्थानः
प्रविविक्तभुका भाषांतर देख लेंगे। स्वप्न स्थान, स्वप्न जिसका स्थान है, तथा जो अंतप्रज्ञ है, स्वप्न जिसका स्थान है और अंतप्रज्ञ है, यानी भीतर को स्वप्न अवस्था को जानने वाला। कितने अंग है, तो बोले यहां भी 7 अंग है। कितने मुख है, यहां भी 19 मुख है। प्रविविक्त भूत तैजसः, और सूक्ष्म विषयों का जो भोक्ता है वह तैजस इसका दूसरा पाद है। प्रविविक्त भूक, सिर्फ भूक नहीं कहा, सूक्ष्म भूक नहीं कहा, प्रविविक्त यानी जागृत अवस्था में जो भोग चल रहा है, जागृत अवस्था में भोग करते करता जो जीव है, देखिए भोग तो कंटिन्यू हो रहा है, भोग तो होता ही चला जाएगा, भोग से आप नहीं रुक सकते, क्यों, क्योंकि संचित कर्म जो है, संचित कर्म लेकर आए प्रारब्ध में, वो प्रारब्ध कर्म जो है एक के बाद दूसरा हम ऐसा सोचते हैं कि सुषुप्ति और स्वप्न में भोग बंद हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। भोग तो चल ही रहे, भोग बंद हो गए, भोग यानी भोग की वासना विचार, ये विचार बंद हो गए तो विचार जब बंद हो जाएगा उसी का नाम मृत्यु है। मृत्यु उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अंतिम एंड प्रारब्ध कर्म, आप 1,00,000 प्रारब्ध कर्म लेकर आए हैं तो 1,00,000वां प्रारब्ध कर्म जो है वो खत्म हो जाएगा, वो विचार खत्म हो जाएगा और शरीर गिर जाएगा। ऐसा नहीं है कि शरीर पात देह पात हो गया तो इसके प्रारब्ध कर्म बंद हो गए, ऐसा नहीं है भाई। प्रारब्ध कर्म खत्म हो गया क्या है, जितना गाड़ी में पेट्रोल भरेंगे ना उतना ही किलोमीटर दौड़ेगी ना गाड़ी, फिर गाड़ी बंद हो जाती है तो गाड़ी बिगड़ गई, गाड़ी बंद हो गई, नहीं गाड़ी नहीं बिगड़ गई, गाड़ी बंद नहीं हो गई, पेट्रोल खत्म हो गया। तो यहाँ प्रारब्ध का अंत हो जाना ही मृत्यु है। तो भोग तो चल ही रहे हैं, तो जागृत अवस्था में जो भोग चल रहे थे वही कंटिन्यू हो रहे थे, जागृत अवस्था में जो भोग छूट गए, प्रविविक्त यानी छूटे हुए, दूर किए गए, टूटे हुए जो भोग है वो अब यहाँ कंटिन्यू होते हैं, पर उसका जो उसकी जो डिजाइन है, उसकी जो क्वालिटी है वो बदल जाती है, वो क्या हो जाती है, वो अब सूक्ष्म हो जाती है, इतना ही है। इसीलिए प्रविविक्त ऐसा शब्द उपयुक्त किया गया है, प्रविविक्त भोग, पर भोग तो यहाँ चल ही रहा है, भोक्तापना तो चल ही रहा है। तैजस उसका नाम क्या है, तैजस कहा है, द्वितीय पाद। अब जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था, तो यहाँ 7 अंग है, वही अंग है, 19 जो मुख बताए हैं वही मुख बताए हैं। अगर ये सब कुछ एक ही है तो वहाँ वैश्वानर कहा, तो यहाँ तैजस क्यों कहा, यहाँ भुगतने का जो भोग तो है ही, पर भुगतने की जो प्रक्रिया है, जो प्रकार है, वो प्रकार बदल गया है। वहाँ स्थूल भोग था, यहाँ सूक्ष्म भोग है, प्रकार बदल गया, इसीलिए नाम बदल गया, टर्मिनोलॉजी। वेदांत में आप हमेशा देखेंगे एक ही टर्मिनोलॉजी से सब कुछ नहीं चलता है, जो जहाँ उपयुक्त है वहाँ वो शब्द का, ये बुमरैंग जैसा है, बुमरैंग है ना वो, ऐसा ऑस्ट्रेलिया में ऐसा खेलने की एक चीज आती है, ऐसा सेमी ट्रायंगल आता है और वो ऐसा फेंकते हैं, वो ऐसा फेंकते हैं वहां से जाके फिर वो गोल गोल होके आपके ये हाथ में आ जाता है, फिर से आ जाता है। तो ये वेदांत की जितनी शब्द प्रक्रिया है वो ऐसी है, जब जहाँ जरूर हुई वहां से वो शब्द को निकाला, उसका उपयोग हो गया और वो शब्द वापस आ जाता है, ये वैश्वानर ही तैजस बन जाता है। और तैजस के नाम से हम फिर से दूसरा हम शब्द देते हैं, वो फिर से ले आते हैं, शब्द का प्रयोजन समाप्त हो जाने पर वो शब्द खींच लिया जाता है, तैजस को फिर से हम ले लेते हैं। अब सुषुप्ति अवस्था में हम प्राज्ञ नाम का शब्द देंगे और फिर वो प्राज्ञ को ले लेंगे, बस इसी प्रकार ये तैजस नाम दिया गया है। तो ये जो अवस्था स्वप्न अवस्था जो है उसमें हो क्या रहा है, तो जागृत अवस्था में देखिए, अगर जागृत अवस्था नहीं होती तो स्वप्न अवस्था हो नहीं सकती थी, ये एक बात है। इसीलिए शंकराचार्य जी ने जो क्रमशः शब्द का उपयोग किया है, इसीलिए किया है कि पहले जागृत को ही जानो फिर ही स्वप्न को। क्रम याने जागृत अवस्था में हो क्या रहा है, जागृत अवस्था में मन जो है वो कार्बन पेपर का काम करता है, मन कार्बन पेपर का काम करता है, उसके ऊपर सब छाप पड़ती है, सब इम्प्रेशंस उसके ऊपर पड़ती है। आंख से रूप को देख लिया, रूप तो चला जाता है, रूप के साथ सन्निकर्ष होके आनंद जो है वो जागृत अवस्था में आनंद का भोग हो जाता है, पर उसकी जो छाप है, उसके जो संस्कार है, वो संस्कार भीतर आ जाते हैं, संस्कार स्टोर हो जाते हैं मन के ऊपर। ऐसे हम जन्मे, आंखें खोली, तब से जो देखना शुरू किया वो अब तक इस क्षण के जितने भी रूप के संस्कार है वो अभी तक अंदर भीतर पड़े हुए हैं। इतने तो काफी है, स्वप्न में तो ये काफी है, हाँ जितने भी, इतना ही नहीं है, यही मन, यही एक ही इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपके कंप्यूटर की छोटी सी सिलिकॉन चिप होती है 1 इंच की, उसमें आप पूरे देश भर की एनसाइक्लोपीडिया है वो उसमें आप फीड कर सकते हैं। तो एनसाइक्लोपीडिया में सिर्फ शब्द नहीं होते, फोटोग्राफ भी होते हैं, उतना ही नहीं होता है, अब तो नए नए सब वर्जन निकलते हैं तो उसमें वो आप बटन दबाते हैं तो वो बोलने भी लगता है। अगर शेर के बारे में सब कुछ जानना है तो शेर कैसा आवाज कर रहा है वो भी एनसाइक्लोपीडिया आपको कंप्यूटर आवाज करके बताएगी कि भाई ऐसा आवाज कर रहा है शेर। तो वहां क्या है, वो इतनी सी सिलिकॉन चिप में वो साउंड के भी संस्कार है, दृश्य के भी संस्कार है, वो कैसे दौड़ रहा है वो भी आपको दिख रहा है, यानी एक ही में सब कुछ है। इसी प्रकार ये एक ही जो मन है, यही मन में जितने जितने शब्द जन्म से लेके अब तक के आपने श्रवण किए हैं, उसके सूक्ष्म संस्कार, बीजात्मक संस्कार, उसकी छाप जो है वो मन में हो गई है। शब्द चले गए, शब्द जहाँ से निकले थे वो भी चला गया, शब्द से सन्निकर्ष में जागृत में जो आनंद आया वो आनंद भी चला गया पर उसके संस्कार रह गए हैं। इसीलिए भाई आप कैसे कह सकते हैं उसके संस्कार रह गए हैं? इसी प्रकार कि कोई एक व्यक्ति को आप मिलेंगे और वह व्यक्ति बड़ी खुश रहती है, उसके साथ उसका कुछ मनमेल आपके साथ बैठ गया है और पास में जब आपने उसके साथ कोई भी व्यवहार किया था तो आपको सुकून मिला था, तो ये सुकून मिला ये संस्कार कैसे हो गए? ये संस्कार अंदर हो गए, इम्प्रिंट हो गए। नहीं तो जब वो व्यक्ति दूसरी बार आपको मिलता है तो वो सुकून के जो संस्कार है ना, वही आपको प्रेरित करते हैं कि नहीं इसके साथ मैं रहूं, ठीक है। नहीं तो फिर पहली बार कोई किसी को आप मिलते हैं तो आप कितने रो होते हैं, कोई भी प्रकार की संस्कार भीतर नहीं है, ऐसा ही दूसरी बार मिलने पर होना चाहिए वो व्यक्ति को। भाई ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। पास्ट में जो संस्कार हो गए भाई, वो व्यक्ति ने आपके साथ अभी बात भी नहीं की, दूसरी बार मिला, बराबर समझिए, दूसरी बार मिला व्यक्ति और बात भी नहीं की है, अब तो सामने सिर्फ आंख से देखा और भीतर क्या हो गया, भीतर मिलू या न मिलू वो डिसीजन आ गया। ये डिसीजन किसने लिया, किसके जरिए आपने लिया? तो बोले पहली बार ये व्यक्ति को जब मैं मिली थी तब ऐसी ऐसी बातें हुई थी और मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए नाउ आई टेक द डिसीजन टू बी विथ हिम और हर। और पहली बार जब मिले थे तब मुझे सुकून नहीं आया था तो हम अवॉइड करने लगे। आपको हमें क्या बताना है कि भाई संस्कार भीतर पड़ते हैं और ये आपके अनुभव की चीज है, हम बोले और आपको मान लेना जरूरी नहीं है, आपके अनुभव के, आपने अनुभव किया है। जैसे नीम का पत्ता, नीम का पत्ता है, नीम का पत्ता यानी जो लिमड़ा होता है, नीम कड़वा, तो ये नीम का पत्ता जो है एक बार आपने चख लिया, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत स्वादिष्ट लगता है। हाँ, कल लेकर आएंगे तो पांच नीम के पत्ते किसी ने आपको दे दिए। हाँ, कोई स्वामी जी प्रसाद में नीम के पत्ते ही देते हैं, तो पहली बार तो दिया तो खा लिया, वही स्वामी जी के हाथ का तो खा लेना पड़ता है। हाँ, तो खा लिया, फिर दूसरी बार वो स्वामी जी आ गए और पैर पड़े और देखा, भाई पहले देख लेते हैं वो प्रसाद में क्या लेके बैठे हैं आज, तुलसी पत्र है या नीम के पत्र, वो नीम के पत्ते लेके बैठे थे। अब क्या हो गया, अब अभी स्वामी जी ने अभी हाथ में भी नहीं रखा है और क्या हुआ, कुछ होने लगता है। हाँ, मुख में कड़वाहट आ जाती है, टेंशन चिंता बढ़ जाती है कि अब होगा क्या, नहीं लेंगे तो दोष होगा, ले लेंगे तो क्या हालत है वो मुझे पता है। हाँ, तो वो कैसे पता हो गई,